हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यांश के दादाजी मिस्टर पृथ्वी कपूर की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी थी। ये इवेंट काफी बड़ा रखा गया था, जिसमें खास मेहमानों को बुलाया गया था। आर्यांश कियाना के साथ वहां पहुंचा था और अपनी बर्थडे पार्टी में आर्यांश के दादाजी ने कियाना और आर्यांश के सगाई को अनाउंस किया था। आर्यांश अपने तरीके से कियाना से निपटना चाहता था, इसीलिए जब सबके सामने उसके दादाजी ने आर्यांश से इस रिश्ते के बारे में अपनी राय जानी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सगाई करने के लिए हाँ कह दी थी। उसी पार्टी में दीवा प्रियंक के साथ मौजूद थी। वो गेस्ट की भीड़ में पीछे की तरफ प्रियंक के साथ खड़ी थी। जब उसने देखा कि आर्यांश ने कियाना से सगाई करने के लिए हाँ कह दी है, तो ये देखकर उसका दिल टूट गया था। आर्यांश ने दीवा से यही कहा था कि वो फिलहाल उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता है, पहले उसे कियाना और अपने रिश्ते के मामले को संभालना था। प्रियंक बस उसे सच्चाई दिखाना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहां लेकर आया था। दीवा को अपने प्यार पर बहुत यकीन था, लेकिन आज इस तरह अपना यकीन टूटा देखकर उसे काफी बुरा महसूस हो रहा था। दीवा की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब देखकर दीवा को झटका सा लगा था, लेकिन प्रियंक ने उसे वहां रोक लिया था। प्रियंक की वजह से दीवा अपने दिल पर पत्थर रखकर वहीं पर खड़ी थी। सौरभ बजाज ने दीवा को दिलासा देने के लिए उसके कंधे को हल्का सा सहलाया और धीमी आवाज में कहा, फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम आर्यांश के साथ काफी दिनों से रह रही हो और तुम्हारा रिश्ता भी आगे बढ़ गया है, लेकिन मैं एक छोटी सोच का आदमी नहीं हूं। तुम मुझे हमेशा से पसंद थी डॉक्टर गोयनका, बस तुम्हारी एक हाँ का इंतजार है। आज भी मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरे घर की बहू बनो। डैड प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? ये कोई मौका नहीं होता है किसी के सामने प्रपोजल रखने का, प्रियंक ने थोड़ा झुंझलाकर कहा। हालांकि कभी प्रियंक ने सौरभ से ऊंची आवाज में इस तरह चिढ़कर बात नहीं की थी, लेकिन आज उसे सच में सौरभ पर गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि सौरभ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर दीवा अपने गुस्से में आकर प्रियंक से शादी करने के लिए हाँ कह दी थी, तो आर्यांश गुस्से से पागल हो उठता। भले ही वो बदला लेने के लिए दीवा के साथ हो, लेकिन वो उसे किसी और के साथ भी नहीं देख सकता था। मैं बस उसे सही फैसला लेने के लिए समझा रहा हूँ, ये खुद समझदार है, सौरभ ने कंधे उचकाते हुए सफाई दी। दीवा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। वो इस पार्टी में आना तक नहीं चाहती थी। आखिरी मोमेंट तक दीवा मना कर रही थी, लेकिन प्रियंक उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर आया था। दीवा की नजरें आर्यांश पर टिकी हुई थी, जो सबके सामने कियाना का हाथ पकड़े अपने दादाजी के पास खड़ा हुआ था। आर्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इससे अच्छा तो मैं कभी यहां पर आती ही नहीं। मैंने कहा था तुमसे आर्यांश, अगर तुम मुझसे झूठ भी बोलो तो ऐसे बोलना कि मुझे पता नहीं चलना चाहिए। आखिर सबकी तरह तुमने भी मुझे धोखा दे ही दिया, दीवा ने मन ही मन कहा। उसकी सांस भारी होने लगी थी। प्रियंक ने दीवा के चेहरे की तरफ देखा, जो किसी भी हाल में ठीक नहीं लग रही थी। प्रियंक ने दीवा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। दीवा को भी इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी, फिर चाहे वो आर्यांश का सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे इस बात तक का ख्याल नहीं रहा। उनसे अलग आगे स्टेज पर मिस्टर कपूर केक कट कर रहे थे और उनकी फैमिली उनके आसपास खड़ी थी। जब से आर्यांश ने सगाई के लिए हाँ कहा था, श्रेष्ठ और समीक्षा का चेहरा उतरा हुआ था। श्रेष्ठ चाहकर भी आर्यांश की फैमिली के सामने उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। केक कट करने के बाद पृथ्वी ने आर्यांश से कहा, चलो अब तुम दोनों भी रिंग एक्सचेंज कर लो। हाँ वो भी कर लेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि आज आपने इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ तैयारी की है और फैमिली मोमेंट सबके साथ शेयर करने वाले हैं, क्यों ना उसके बाद हम रिंग एक्सचेंज करें, आर्यांश ने सामान्य लहजे में कहा। वो कुछ बड़ी डिमांड नहीं कर रहा था, इसीलिए मिस्टर पृथ्वी कपूर ने बिना किसी बहस के उसकी बात मान ली थी। ठीक है, तो फिर कुछ जिंदगी के बेहतरीन लम्हों को बिताने के बाद रिंग एक्सचेंज सेरेमनी को आगे बढ़ाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए आज का दिन और मेरा परिवार इतना खास क्यों है, पृथ्वी ने मुस्कुराकर माइक में कहा और एक तरफ हट गए थे। सामने एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगी हुई थी। जल्द ही उनका तैयार करवाया हुआ वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा, जिसमें उनके पैदा होने से लेकर अब तक की जर्नी दिखाई जा रही थी। उसे देखकर पृथ्वी की आंखों में हल्की नमी उतर आई थी, पर होठों पर मुस्कुराहट थी। आर्यांश बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उसे बस कियाना की क्लिप का इंतजार था। वीडियो को देखते हुए आर्यांश को इस बात का एहसास हुआ कि सच में कियाना के दादाजी और उसके दादाजी की दोस्ती कितनी खास है। सार्थक आर्यांश के पास खड़ा हुआ था और कियाना इस वक्त अपनी फैमिली के पास थी। सार्थक ने आर्यांश से बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या सच में हमें ये करना चाहिए सर? इन दोनों की दोस्ती भी टूट सकती है। इनकी दोस्ती मेरी जिंदगी से बढ़कर नहीं है सार्थक, आर्यांश ने बेपरवाही से सिर हिलाकर कहा। कई बार वो सच में काफी सेल्फिश हो जाता था। वहीं पूरी पार्टी में कियाना को अभी अपनी फैमिली से बात करने का मौका मिला था। राजवीर के पास आते ही वो उसके गले लग गई थी। राजवीर ने हल्का हंसकर कहा, मैंने तुम्हें यही समझाया था कि थोड़ा पेशेंस रखो, आर्यांश तुम्हारा ही है। कोई भी कल की आई लड़की आर्यांश को तुमसे छीन नहीं सकती है। वो चाहे 10 लड़कियों के पास ही क्यों ना चला जाए, लेकिन शादी उसे तुम्ही से करनी पड़ेगी। अपने दादाजी के सामने आर्यांश कुछ नहीं बोल सकता है। आपने सही कहा था, पर आपकी सीख के साथ साथ मॉम ने भी इसमें मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच हर्षाली मॉम, कियाना बोली। आज पहली बार वो अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए हर्षाली की एहसानमंद हो रही थी, वरना अब तक तो वो उससे ठीक से बात तक नहीं करती थी। हर्षाली कियाना के गले लग गई। उसने उसे सहलाकर कहा, मैंने हमेशा तुम्हें ही अपनी बेटी माना है, चाहे फिर हमारे बीच में कितनी भी अनबन क्यों ना हो जाए। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। कियाना अपने परिवार के साथ बातें करते हुए अपनी सगाई की खुशियां बांट रही थी, लेकिन उसकी वो खुशी बस चंद पलों की थी। आर्यांश का इंतजार खत्म हो गया था। अचानक वो वीडियो कियाना की क्लिप में बदल चुका था। मैं चाहती हूं कि तुम इस लड़की की जान ले लो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी फीस का 10 गुना देने के लिए तैयार हूं। गलती से भी कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट में रहोगे तो फायदे में ही रहोगे। अंडरवर्ल्ड से भी तुम इतना पैसा कमा नहीं पाए होगे जितना मेरे साथ रहकर तुम कमाने वाले हो, कियाना बोली। हाँ सही कहा मैडम, आपके साथ रहूंगा तो पैसों के साथ इज्जत भी कमा लूंगा। आप अमीर लोगों का सही है, चेहरे पर अच्छाई और अमीरी का मुखौटा उड़कर रखते हो, जबकि देखा जाए तो आपके कारनामे हमसे भी काले होते हैं, रॉबिन हंसकर बोला। कियाना भी जवाब में कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा दी थी। उसने रॉबिन की बात पर इनकार करना या उसे डांटना तक जरूरी नहीं समझा था। वहीं इससे पहले कि उनकी आगे की बातचीत उस क्लिप में दिखाई दी थी, कियाना जल्दी से स्क्रीन के सामने चली गई थी। वो माइक में चिल्लाकर बोली, बंद करो ये सब। और ये सब किसने चलाया है? कौन हैंडल कर रहा है स्क्रीन को? सामने आओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
कियाना का ये नया रूप देखकर पृथ्वी और सुनिधि हैरान थे, साथ ही वहां मौजूद गेस्ट आपस में बातें करने लगे थे। कपूर खानदान जिसकी लेगेसी पिछले 100 सालों से चली आ रही थी, वो बर्बाद हो जाएगी अगर कियाना उस घर की बहू बनी। ये सच था कि पृथ्वी कपूर से पहले कपूर खानदान के लिंक अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत मेहनत करके पृथ्वी ने उनके सारे बिजनेस को लीगल बनाया था। इस चक्कर में उन्हें काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन उन्हें खुद पर गर्व था कि उनका सारा पैसा अच्छी कमाई थी, न कि किसी तरह का काला धन। पृथ्वी ने इशारे से स्क्रीन को बंद करवा दिया था, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। पृथ्वी से ज्यादा गुस्सा तो कियाना के दादाजी को आ रहा था। मिस्टर शिव जैन आगे गए और उन्होंने कियाना के गाल पर थप्पड़ लगाया। उन्होंने पृथ्वी की तरफ देखकर अफसोस भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि इसने कब गलत राह पकड़ ली। यही सही वक्त था जब आर्यांश शादी के लिए मना कर सकता था। वो तुरंत उनके पास गया और मायूसी से बोला, दादाजी मैं आपकी इच्छा का बहुत सम्मान करता हूँ। सच कहूँ तो मैंने कियाना को हमेशा अपनी दोस्त समझा था, पर मुझे नहीं पता था कि उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं। आई एम सॉरी, पर मैं अब ये शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद नहीं चाहता कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो, पृथ्वी ने दांत पीसते हुए कहा। वहीं कियाना आर्यांश को हैरानी से देख रही थी। आर्यांश ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। उसने सारा दोष कियाना के ऊपर डाल दिया था और ऐसे जता रहा था जैसे उसे इस बारे में कोई खबर ही ना हो। ये तुम क्या बोल रहे हो आर्यांश, मैंने सब कुछ, कियाना हड़बड़ाते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे इसलिए उसके शब्द सही से नहीं निकल रहे थे। डोंट टेल मी किया कि ये सब तुमने मेरे लिए किया है और मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पहले भी तुम्हें शक था कि मैं किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ और इस चक्कर में तुमने उसकी बहन को किडनैप कर लिया था, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। सच का पता लगाए बिना आखिर तुम कैसे किसी की जान के साथ खेल सकती हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे लेकर इतना ऑब्सेसिव हो, जबकि मैंने तुम्हें बार बार यही कहा था कि मैं सिंगल हूँ और किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, आर्यांश ने अनजान बनते हुए कहा। कियाना ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं रही थी। वो खुलेआम इस तरह आर्यांश का सच बताकर उसे भी नीचे नहीं गिरा सकती थी। वहीं दीवा को अब सब समझ आ गया था कि आर्यांश ने चुपचाप इस शादी के लिए हाँ क्यों कही थी। अगर वो सीधे सीधे इनकार करता तो उसके दादाजी नाराज हो सकते थे। आर्यांश ने पूरे सबूत सबके सामने रखे थे और ये साबित किया था कि कियाना उसके लिए सही नहीं थी। दीवा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। दीवा को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि आर्यांश ने कम से कम उससे झूठ नहीं बोला था। हाँ, उसने खुद को सबके सामने सिंगल बताया था, तो दीवा को यही लग रहा था कि आर्यांश सबके सामने उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहता होगा। देखा जाए तो ऐसे मौके पर अपनी रिलेशनशिप अनाउंस करना काफी इनह्यूमन भी था। दीवा ने प्रियंक की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे यहाँ लाने और रुकने के लिए फोर्स किया, वरना मैं जिंदगी भर आर्यांश को गलत समझती रहती और हमारे रिश्ते में भी दूरियां आ जाती। प्रियंक ने उसकी बात पर हामी भरी, उसके चेहरे पर हल्की मायूसी के भाव थे। वो मन ही मन बोला, काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम अभी भी उसे गलत ही समझ रही हो। वो वैसा नहीं है जैसा सबको दिखाता है। फिर भी मुझे इस बात की तसल्ली है कि उसने तुम्हारे साथ अब तक कुछ बुरा नहीं किया और आगे मैं करने नहीं दूंगा। अब सही वक्त आ गया है जब मैं आर्यांश को सच बता दूं, ताकि वो तुम्हें बिना कोई सजा दिए और हर्ट किए आराम से जाने दे। प्रियंक ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे फिर दीवा को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन वो आर्यांश को उसे उस गलती की सजा नहीं देने देगा जो उससे हुई ही नहीं थी। ऐसे में फिलहाल के लिए यही सही था कि आर्यांश और दीवा का रिश्ता सबकी नजरों से छुपा रहे। प्रियंक के इरादे भले ही दीवा को प्रोटेक्ट करने के हों, लेकिन सौरभ बजाज के नहीं। जिस तरह से मामला बदला था और दीवा के मन से सारी गलत फहमियां हट गई थीं, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दीवा और प्रियंक बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए आगे ले जाने लगा। दीवा कुछ नहीं समझ पा रही थी। अगले कुछ पलों में वो आर्यांश के सामने थी, जिसे देखकर आर्यांश को भी झटका लगा था। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है सब कुछ क्लियर हो गया और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका है आर्यांश, जब तुम सबके सामने अपने और दीवा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। मिस्टर कपूर, आज का दिन आपके लिए खास था ना, और आप चाहते थे कि आपके पोते की सगाई हो, तो वो जरूर होगी। ये डॉक्टर दीवा गोयन का है आर्यांश, और ये एक दूसरे के साथ हैं। दीवा को अपने सामने देखकर आर्यांश ने गुस्से से मुठ्ठियां भेज ली थी। उसने साफ मना किया था कि दीवा फिलहाल इन मामलों से दूर रहे। न सिर्फ वो उससे छुपकर पार्टी में सौरभ बजाज के साथ आई थी, बल्कि सौरभ ने गलत वक्त पर दीवा को उसकी फैमिली के आगे कर दिया था। हर कोई हैरानी से दीवा की तरफ देख रहा था, तो वहीं दीवा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सौरभ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया।